Om Shanti. आज बाबा ने राजयोग और हठ योग दोनों के बारे में बताया है। हठ योग हमें जन्म जन्म सीखना पड़ता है और राजयोग हम एक ही जन्म सीखते हैं। बाबा कहे ये राजयोग सीखने तुम्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, तुम एक ही बार राजयोग सीखकर स्वर्ग में चले जाते हो। ये राजयोग सीखना और योग सिखाना ये भी संगम युग की ही यादगार है। और संगम में बहुत कुछ होता है जो भक्ति मार्ग में उसकी यादगार चली आती है, उसको परंपरा के रूप में मनाते हैं। और क्या होता है संगम पर, सावन मास सामने लाओ, अगस्त मास सामने लाओ, क्या क्या होता है। बाबा ने कहा ये जनेऊ बदलने का भी संगम की यादगार है। सावन में जनेऊ बदलते हैं ना, क्योंकि जनेऊ पवित्रता की निशानी है। इस समय तुम राजयोग सीखकर पवित्र बनते हो। ये राखी बांधने की रस्म भी संगम की है, क्योंकि तुम योग सीखकर पवित्र बनते हो। और राखी बांधने के बाद जो खर्चे देने की प्रथा है वो भी संगम की है, क्योंकि तुम बाप से राखी बांधकर रिटर्न में पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हो, ये खर्ची देते हो। बाबा कहे तुम राज योगी भी हो, साथ में राज ऋषि भी हो। ऋषि कैसे हैं, बाबा ने बहुत अच्छा बताया आज। तुम राजयोगी हो, तुम राज ऋषि हो, खाओ पियो घूमो फिरो, सिर्फ मुझे याद करो। बाबा कह मैं और कुछ नहीं बोलता हूं, मालपुड़ा खाओ चाहे रोटी खाओ, लेकिन मुझे याद करो। और बहुत सुंदर बात बताई बाबा ने कि तुम जब योग सीखते हो तो सीधे स्वर्ग में जाते हो। तो जो जब द्वापर युग पतित बनना तुम शुरू करते हो तो ये धरती हिलती है, हिलना शुरू करती है, तो सारे महल कहां गए, अंदर चले गए। इसलिए कहीं भी ये नहीं दिखाते हैं कि महलों को लूटा, दिखाएंगे मंदिरों को लूटा, क्योंकि मंदिर बाद में बनते हैं, महल तो अंदर चले जाते हैं। और तुम स्वर्ग में राज्य करते हो, इसलिए तुमको ज्यादा ज्वेलरी का शौक है और धर्म वालों को नहीं है। तो बाबा ने बहुत सरल शब्दों में और सहज रीति से राजयोगी भी बनाया है, राज ऋषि भी बनाया है। सिर्फ इतना बोला है कि ये जो बाबा सिखाते हैं या समझाते हैं या सुनाते हैं वो अलर्ट होकर सुनो। अगर उबासी आई, झुटका आया तो पद गंवा देंगे, क्योंकि तुम राज योगी हो, तुम राज ऋषि हो। तो अभी राज योगी बनकर बाबा के सामने बैठेंगे। आज है 3 अगस्त 2026। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राज योगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उदासी देते व झुटका खाते बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। गीता, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरकर संभलना है, नहीं संभलना ही संभलना है, गिरना ही नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। आज बाबा ने पहले ही मुरली की स्टार्टिंग में टॉपिक दिया है कि आज बाबा किस टॉपिक पर बताएंगे। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग। क्यों हठ योग सिखाते हैं? वो राजयोग नहीं सिखा सकते, हठ योग ही सिखाएंगे, क्योंकि वो कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म संन्यास सीखना नहीं है, उन्हों को जरूरत नहीं है, उन्हों को तो राजयोग सीखना चाहिए। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग, वो सन्यासियों का धर्म है। ये हठ योग सीखते और सिखाते हैं, और प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सीखना चाहिए। वो धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म कौन सा है? देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वो कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते हैं, जो सन्यासी पवित्र बनते हैं वो कर्म सन्यासी हैं, वो कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं रहते हैं। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना, 84 जन्म लेते 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 देवताएं अभी बिल्कुल कलयुग में आ गए तो अपवित्र बन गए, पतित बन गए। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। उन देव सन्यासियों को 84 जन्मों का हिसाब भी पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि वो बाद में आते हैं। दूसरे धर्म को सन्यास धर्म वाले क्या जाने, और धर्म कब आए कैसे आए वो नहीं जानते, क्योंकि वो बाद में आते हैं। देवताएं कब थे कैसे राज्य किया, अभी वो कहाँ हैं वो कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वो आधा कल्प खत्म होने के बाद आए। ये है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वो है पीछे वाला धर्म। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे प्राचीन है। जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ ना सके। तुम जानते हो हठयोग के अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठयोग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठयोग जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं, द्वापर युग से सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो, ये अंतर बता रहे हैं बाबा। उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठयोग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वो लास्ट में एक जन्म में ही राजयोग सीखकर हम स्वर्ग में चले जाते हैं। ये राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को भी क्या कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी क्या हो इस समय? महात्मा पवित्र होते हैं तो तुम क्या हो? तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। आज बाबा ने सब ब्राह्मणों को टाइटल दिया, तुम महात्मा भी हो राज ऋषि भी हो। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वो बैठ खेल बनाते हैं। खेल बनाते माना उसकी स्टोरी बनाते हैं, कृष्ण की, राम की, इन सब की स्टोरी बनाते हैं। तो फिर जो स्टोरी बनती है उस पर ड्रामा माना खेल करते हैं। सच्चा तो नहीं है, जो हो गया उसको एक स्टोरी ही कहेंगे। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, उसकी फिर हिस्ट्री बनाई है। हिस्ट्री है ना, भाई ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, फिर ये हुआ, ये जो भी यादगार है वो फिर एक हिस्ट्री व स्टोरी के रूप में हो गई। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर थे। अब संगम पर क्या क्या है, संगम की क्या क्या यादगार है वो देखो। एक तो बताया तुम राजयोगी हो, तुम राज ऋषि हो, तुम महान आत्मा हो, और ये जो ब्रह्मा आदि की कृष्ण की कहानियां भी तुम्हारी संगम की है। यादव कौरव पांडव थे वो भी जरूर संगम पर थे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है, जो भी यादगार है वो संगम की है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। अभी ये राखी आ रही है ना, इसलिए मैंने कहा सामने सावन मास लाओ या अगस्त मास लाओ, अगस्त मास में क्या क्या होता है ये हमारी ही यादगार है। पीछे फिर उसका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है, वो भी अभी का यादगार है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है। तो अभी हम पवित्र बनते हैं तो उसकी देखो कितनी यादगार है, वो पूरा कल्प उसकी यादगार चली आती है। परंतु बाबा ने कहा वो जनेऊ पहनते हैं वो पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं है। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। राखी बांधते हैं वो ब्राह्मण जाके सबको राखी बांधता है, समझते हैं ये एक परंपरा है कि आज के दिन ब्राह्मण आएगा, बहन आएगी, राखी बांधेगी। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है वो खर्ची देते हैं। पहले भाई बहन का राखी बांधने का भी इतना नहीं था, अभी फैशन है। बाकी पहले तो ब्राह्मण ही बांधते थे। अभी बाबा ने कहा बहन भाई को राखी बांधती है वो खर्ची देते हैं, ये सब अभी फैशन पड़ा है। क्यों पड़ा है फैशन, क्यों फैशन पड़ा? क्योंकि ये है अभी पवित्रता की बात। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। वह लोग, वो ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं, वो राखी बांधते हैं तो समझाते थोड़ी है कि भाई राखी क्या है, क्यों बांधते हैं, हम क्यों आए हैं। नहीं, परंपरा है। और हम किसी भी को राखी बांधने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको अर्थ समझाते हैं कि राखी क्यों बांधी जाती है, तिलक क्यों किया जाता है, ये मुख मीठा क्यों कराया जाता है, ये सारा ज्ञान देते हैं ना। और उनसे खर्ची लेते हैं, क्या खर्ची लेते हैं, कोई ना कोई प्रतिज्ञा करवाते हैं। वो ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो हम पवित्र बनेंगे। अभी बाबा सच्ची राखी बांध रहे हैं, प्रतिज्ञा करवा रहे हैं, हम बच्चों को राखी की खर्ची लेते हैं। कभी विकार में नहीं जाएंगे, ये खर्ची देनी है। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते क्योंकि वह ही पवित्र, तो बाबा को बुलाते ही नहीं है। वह ही राम राज्य, ये है रावण राज्य। राम राज्य में पांच विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। यहाँ सब किस लिए बैठे हैं? बादशाही लेने बैठे हैं। ये सारी प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज है। इस नरक से जाना जरूर है, बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने? उनों के हठयोग के तो अनेक प्रकार हैं। जब बाबा हठयोग के प्रकार याद करते हैं तो किसको याद करते हैं? जयपुर में एक म्यूजियम है हठयोगियों का, उसमें बहुत वैरायटी पोज दिखाए हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठयोगियों की। उनसे होता कुछ भी नहीं, वो फिजिकल फिटनेस के लिए है और ये आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए। जब आत्मा शक्तिशाली बनती है तो शरीर भी शक्तिशाली बनता है। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते। बाप ने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है तो क्या होता है? जब भारत पतित बनेगा, रावण का राज्य होगा तो क्या होगा? धरनी हिलने लगती है, वो भी थोड़ी दुखी हो जाती है तो हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी ही है। कोई भी हिस्ट्री में देखो कोई महलों को लूटा नहीं है। एक दूसरे के राज्य पर चढ़ाई करके वो राज्य जीता है लेकिन लूटा नहीं है, लूटा मंदिरों को है। तो बाबा कहते हैं महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी है, वो तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है, शौक है लेकिन संगम पर तो राज ऋषि हैं तो पहनते नहीं है, वो शौक कहाँ पूरा करेंगे सतयुग में। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। वो जो दूसरे धर्म स्थापन करने आते हैं वो सीधा राज्य नहीं करते हैं, पहले तो बहुत सहन करते हैं, मेहनत करते हैं, और हम सीधा जाके स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो, तो ये बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। बाबा गीता पढ़कर या कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते हैं, ये सच्ची गीता अपने मुख से सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है, अब डायरेक्ट सुनो बाबा ने क्या कहा। वो गीता पढ़ते हैं ना, तो बाबा हम तो कह देते हैं गीता है या शास्त्र है, आटे में लून है। बाबा डायरेक्ट कहते हैं गीता में जो कुछ लिखा है वो सब मैंने कहा नहीं है, वो तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया वो तुमने ही सुना। देखो कितनी खुशी की बात है, नशे की बात है या अंडरलाइन की बात है, वो बाबा कहते वो सब मैंने नहीं सुनाया है, और जो मैंने सुनाया वो तुमने ही सुना है। हमने जो तुमको सुनाया वो तुमने ही सुना, और फिर जाकर राजाई की वहां ये ज्ञान नहीं रहता, प्रायलोप हो जाता है। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं और कोई लैंग्वेज में नहीं बताते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना कि भई हम हिंदी हैं, हिंदी हैं, माना भारतीय हैं, जो उनकी भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा कौन सी है? वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, ना कि संस्कृत। ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई, नहीं, गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं, उसमें राजाएं भी होते हैं, सन्यासियों में राजाई नहीं है। और धर्म में राजाएं अपना राज्य त्याग कर भी वो धर्म अपनाती है, जैसे गौतम बुद्ध ने अपनाया, महावीर स्वामी ने अपनाया, ऐसे सिख धर्म में भी है। बाबा ने समझाया बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे, अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके, तो क्या हुआ, कैसे धर्म स्थापन हुआ? उसमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, उसके बाद जो छोटे छोटे धर्म निकले अभी भी निकलते रहते हैं वो तो बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन कर देते हैं। जाड़ में भी दिखाया है ना, जाड़ में देखा ना, पहले तो ये पांच ही ब्रांच दिखाई है, फिर धीरे धीरे ऊपर छोटी 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 बहुत ब्रांचेस हैं। तो हठयोग और राजयोग में बहुत फर्क है। ते मुरली से शुरुआत से ही बाबा आज इसी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। ये बातें समझने की है, जिसको समझ में नहीं आती होंगी वो क्या करेंगे, बाबा समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची बातें बता रहे हैं, महीन बातें बता रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आती होगी वो जुटका खाते उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, जिसको कमाई हो रही है तो नींद आएगी, बहुत ग्राहक आ रहे हैं, खूब इनकम हो रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो कैसे अलर्ट रहते हैं, बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो तो ये आंखें खोल कर सुनना होता है। जुट के खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वो राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। कौन से राज ऋषि हो? राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते, वो तो खुद ही राज्य में आते हैं, खुद राजाई करते हैं, वो राजाई स्थापन नहीं करते हैं। श्री कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं, अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम शौकार बनते हो, सुबह सुबह कमाई करने बैठते हैं, खजाना जमा करने बैठते हैं, यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी कैसा कैसा राजयोग सिखाते हैं, सिर्फ बोला अलर्ट होकर बैठो, बाकी क्या, सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ एक बाप को याद करो। कितने अच्छे राज ऋषि हो, उन ऋषियों को तो कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। शाहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वो तो अपनी कमाई का फल खाते हैं, मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ, सभी ने भोग खा लिया ना गुरुवार का, तो बाबा भी रिमाइंड करा रहे हैं मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ, अगर मीठा नहीं खाना है तो रोटी खाओ। याद करो बाप को, बल कुछ भी खाओ। इसलिए बाबा के घर में मधुबन में रोज वैरायटी मिलती है ना। पैसा तब किसके लिए है, बाबा कहते हैं सब खाओ कुछ भी खाओ वैरायटी खाओ, बाकी पैसा तब किसके लिए है, बाबा कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है, उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, ये जो हमारी माया से लड़ाई है इसमें खर्चा नहीं है, नई दुनिया स्थापन हो रही है उसमें खर्चा नहीं है, इसलिए खाओ पियो। बाकी उस लड़ाई में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। क्या क्या याद करना है वो बाबा बता रहे हैं, घर जाकर फिर राजाई करेंगे। तुम एक्टर सोना, वो बायोस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलता है, यह बेहद का नाटक 5,000 वर्ष चलता है, इसको मनुष्य ही जान सकते। ये दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े पे बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध, ऐसे छोटे छोटे कांटे तो बहुत है वो निकलते रहेंगे, पहले बड़े बड़े कांटे निकालने हैं। उनकी निशानी काम का कांटा और क्रोध का कांटा, ये 2 बड़े कांटे हैं, उसकी निशानी शास्त्रों में दिखाओ क्या है। ये विकार 2 बड़े कांटे हैं, उसकी यादगार दिखाओ। महाभारत और रामायण, तो उसकी निशानी ये महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो जट बॉम्ब शुरू कर देंगे, अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। पहले बेबी बॉम्ब बनाया, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया, तो कितना नुकसान हुआ, अभी तो उससे भी बहुत एडवांस बनाए हैं। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही ये महाभारत लड़ाई दिखाई है, दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात नहीं है, वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं तो अहिंसक हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। उसमें तो गुस्सा करके अपना बल दिखाते हैं और हम साइलेंस बल से राजधानी स्थापन करते हैं। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख भी देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं वह तो सुख के लिए करते हैं, ये भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। साइंटिस्ट हैं वो भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे, थोड़ा ज्ञान लेंगे, थोड़ा कुछ पुरुषार्थ करेंगे, तब तो सतयुग में आएंगे और अपना हुनर दिखाएंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा, पहले ही बाबा ने कहा। तो कितने आते हैं? तुम प्रश्न पूछते हो, कोई आता है तो क्या पूछते हो? गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके, दूसरा पूछेगा? दूसरों को पता ही नहीं है कि गीता का भगवान है कौन, तो फिर पूछेंगे कैसे? जहां ये प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। बाबा सेवा का भी बता रहे हैं कि जब एक तरफ प्रश्न पूछो साथ में चित्र दिखाओ, गीता का ज्ञान दाता कौन। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी है। उनको बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए। श्री कृष्ण की आत्मा जो सांवरी बनी है उसको शिव बाबा आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। एक्टर को स्टोरी का तो पता होना चाहिए ना, मेरा क्या क्या पूरे ड्रामा में रोल है। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने कारण और धर्मों में जाते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। उनको ये पता हो कि हमारा प्राचीन धर्म है तो कन्वर्ट नहीं होंगे। किसी गुरु को आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उसके पीछे चटक पड़ेंगे, उसके पीछे श्रद्धा बैठ जाती, आस्था बैठ जाती है। फिर देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी, मिला तो कहेंगे गुरु का आशीर्वाद, गया तो खुदा की भावी। बच्चा मिला बहुत खुशी होगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है, वो गुरु क्या कहेगा कि देखो मैंने आशीर्वाद दिया, तुमको मंत्र दिया, तो मेरे आशीर्वाद से तुमको बच्चा मिला। फिर बच्चा चला गया तो क्या कहेगा गुरु कि अभी इसको जिंदा करना मेरे हाथ में नहीं है, ये खुदा की भावी थी, ये ईश्वर की भावी थी। बाबा के ऐसे बहुत मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं यहां तो बाप बैठा है। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत महाभारी लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको ये दुशासन नंगन करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। अब बाबा याद दिला रहे हैं कि तुमने पुकारा और मैं चला आया। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विषय विषपर ही होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष बिगर रह नहीं सकती। उनों का नाम भी रखा हुआ है। कहीं कहीं भाई ज्ञान में चलना चाहते हैं तो बहने नहीं चलना चाहती, कहीं बहने चलना चाहती हैं तो भाई लोग रोकते हैं। तो बाबा कहते हैं उनों का नाम भी रखा हुआ है, सारे नाम याद करो। सुपना पूतना, जो विष के लिए तंग करते हैं वो है कंस, जरासंगी, शिशुपाल, कितने नाम है, कोई भी नाम अच्छा नहीं है। ये सब विनाश को तो पाने ही है। ये जो टाइटल जिस पर लग जाएगा वो सब विनाश को पाएगा। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। ये भूलता तब है, ये सारा चक्र का ज्ञान भूलता कब है, जब विकार में जाते हैं द्वापर युग से। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। अभी भी बाबा का ज्ञान लेते हैं और कोई मर्यादा तोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं मुंह ही पीला हो जाता है। खुद ही समझते हैं हमने ये क्या कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें ना पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। देखो बाबा कितना तैयार कर रहे हैं। भगवान वाच्य है काम महाशत्रु है। हरेक चित्र में पहले तो यह लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच्य, ये हरेक चित्र में पहले भी लिखा होता था। शुरू में चित्र जितने बने हर चित्र में ये नीचे लिखा होता था भगवान वाच्य। अभी भी जो पुराने चित्र हैं उसमें ये जरूर होता है। तो फिर श्री कृष्ण का नाम उठ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ ये बताते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। उनको निश्चय से बताओ कि गीता का भगवान हमको ज्ञान दे रहा है, वही हम ज्ञान लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुल है शिव बाबा। रुद्र कौन है, शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहेंगे। बॉम्बे में बाबूरीनाथ का मंदिर भी है, उसको बबुलनाथ का भी मंदिर कहते। बबुल होते कांटे, कांटे पर जीत पहनाने वाला बाबूरीनाथ। अब बबुल कहा जाता है कांटों को, बाबूरीनाथ नाम क्यों रखा है ये कोई समझते नहीं। इतने जो शिव बाबा के नाम है उसमें कोई ना कोई मीनिंग है, वो मीनिंग उनको नहीं पता होता है। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः अक्षर बिल्कुल क्लियर है। वो ब्राह्मण लोग जो बोलते हैं, बाबा कहते बोलते तो ठीक है, लेकिन मीनिंग नहीं जानते। वो अब परम पिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं हूबहू। अभी देखो लास्ट में बाबा बच्चों को राजयोगी भी बनाया, राज ऋषि भी बनाया, बहुत शिक्षाएं भी दी। अब लास्ट शिक्षा सुनो, कहते हैं जैसे लौकिक बाप बच्चों को बताता है ऐसे मैं तुमको बता रहा हूँ। अब क्या बताता है एग्जाम्पल देख करके, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना। वो बाप कहता है ना मेरा नाम खराब नहीं करना, कोई खराब काम नहीं करना। बच्चों को सावधानी देते हैं कि बच्चे तुम बड़े हो गए हो, जॉब भी करते हो, पढ़ते हो, लेकिन मेरा नाम कहीं खराब नहीं करना, ऐसा कोई गलत काम नहीं करना। तो ये बाबा भी कहते हैं बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गंवा रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, कमाई कर रहे हो। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तुम समझते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे, तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है सिर पर, थोड़े समय के अंदर यह अर्थक्वेक आदि हो सब डाबाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं, अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है सो फिर इन आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके, ज्ञान बिगर सदगति हो न सके, यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। वो जब पूजा पाठ तीर्थ मंत्र जप क्या नहीं करते, पूरा सावन मास याद करो सामने लाओ क्या नहीं करते, बाबा कहते ये सब क्या है, भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद त्याग और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं सुनी और लास्ट में लौकिक बाप की तरह सावधानी भी दे दी। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है, पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। आज का वरदान, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अभी कौन सा खेल है अलौकिक, वो तो भक्ति मार्ग के खिलौने बताए, अभी अलौकिक खेल और खिलौने सुनो। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का और सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। ये अव्यक्त इशारे। अभी नया टॉपिक, नया होमवर्क मिला है इस महीने का, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाप दादा का मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भव व योगी भव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। अच्छा, ओम शांति।